प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाण। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीव। अपनात्माओं, इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा हमने और भी बहुत कुछ जानना होगा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण। चारों युग प्रमाण है परमात्मा कबीर जी का, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसाण। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधर जीव, यानी झूठे गुरुओं की शरण में जाकर के जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से ही आते हैं, जो उनका ओरिजिनल नाम है। अपने आत्मा आज वर्तमान में युराधा स्वामी पंथ ठेका ले रहा है सतलोक में जान का, क्योंकि काल द्वारा प्रेरित, काल द्वारा चलाया हुआ ये पंथ है। अब गरीबदास जी महाराज जी ने क्या कहा है कि सच्चे कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीव, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसाण। एक प्रमाण देता हूं आपको, ये राधा स्वामी पंथ आज भारतवर्ष में सरनाले की तरह सब तो ज्यादा फैला हुआ है, और ये कहते हैं कि हम सतलोक का ठेका ले रहे हैं, सतलोक में भेज देंगे तुमने। और ये क्या बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा नहीं है, वहां तो चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है। अब झूठे गुरु की पहचान, हमारे एक भगत ने एक राधा स्वामी पंथ के भगत से प्रश्न किया कि भाई आपके परम धनी इस कलयुग तो पहले भी कभी आए तुमने संभालने के लिए, आपके लिए कभी पहले आए किसी युग में बता दो, है तुम्हारे ग्रंथ में प्रमाण? कहने लगे ना पहले तो नहीं आए, और कबीर जी चार युगों में आए, तो परम धनी कौन होए? अगिया बात तो हमने कभी सुनी, बात तो ध्यान में नहीं आई, उस तो पहले फिर की जा रहे थे परम धनी। ये क्या कि परम धनी थे, ये तो काल प्रेरित थे, पिछली पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार अच्छे थे, काल का फंस गए और हठ योग करके सिद्धियां सी आ गई, कुछ दिन ये अपना काम चलाकर दुनिया ने काल के मुंह में फंसा गए। अब देखो इनकी इनका ज्ञान दिखाते, झूठे गुरुओं का ज्ञान देखो। ये है सार्वचन, सार्वचन वार्तिक, सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी व्यास, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जगमल सिंह पंजाब। मुद्रक हैं ये लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। भूमिका, इससे पता चलेगा यूके सांग है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक जो है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ठीक है, इतना काफी, आगे चलेंगे। ये कौन है परम धनी, ये और देख लो। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज, ये शिवदयाल जी यानी परम धनी, का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अभी इनका सुरत शब्द योग बताऊंगा के वो है। और 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। इनका के है सुरत शब्द उपदेश, कहते हैं कान बंद कर लो और एकांत स्थान पर कमरे में बैठ जाओ, आवाज ना हो बारी की। कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो और मंद मंद स्वर से श्वास लो और अंदर की आवाज सुनो, शब्द अंदर के ये शब्द सुनो। घंटी सी बाजती सुनेगी, फलाना सुनेगा, झींगा शब्द सुनेगा। कहते 18 वर्ष एक कमरे बैठ कर यू करे इसने। अब ऐसी साधना करने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं छोटी मोटी। कहते फिर 18 साल के हठ योग करके इसने प्रचार शुरू कर दिया। हमारा एक भक्त ने नाम ले रखा, उसका पिताजी राधा स्वामी से संबंध रखता था, बहुत पुराना भगत था। और ये दास जब कभी उनके जाता था तो वो क्या करता था, खेतों मकान था, एक नाली में बैठा। एक दिन मैं शाम के समय गया, 5-6 बजे से स्कूटर था मेरे पास जब नौकरी करता था, तो खेतों में गया। मैं दूर से स्कूटर रोक के वहां फिर पैदल जाना पड़ा इनके घर तक। पानी सा बीच में खेतों में पानी डाल सिंचाई कर रखी थी, तो डोले के साथ साथ गया थे। एक बंदर सा बैठा नाली में रात के शाम ने, मतलब शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा सूर्यास्त होने वाला था और नो बैठा नो करे। मैं उसके पास से निकलिया, वह पूछा मैं वो कौन बैठा है। बोला मेरा बाबू बैठा है। मैं क्या कर रहे, नो का बोला अभ्यास करूं सुरत शब्द का। फिर वो काना अब तभी हाथ हटा लिया, फिर नो बैठा। फिर वो थोड़ी देर में उठका आ गया। मैंने पूछा माँ के देखा था भगत जी वहां क्या कर रहे थे। उन्होंने बोला अन जंगा शब्द सुनू था उड़ा जंगा शब्द और वो बह रहा हो कम सुने उसने। मैं कहा न्यू जंगा बोला नाली में बोल रहा था। उस नाली में यानी जो सिंचाई का दाना बोल रहे उसने, उन्होंने बोला उसमें सुनू था कि शाम के समय कीड़े मकोड़े बोले आ रहे चो चो चो। उन्होंने बोला जंगा शब्द सुनू था मुड़ा बैठ कर। मैं भीतर सुने था बाहर सुने था अभ्यास। वो तो जिंगा तो बाहर बोल रहा था, फिर तेरा तुम भीतर सुनो, भीतर बताओ थे। अब भीतर लेगा अंदर वाले को और बताता हूं इसकी के द्रुपति बनी। अब देखो इनका ज्ञान, ये वही पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। अब इसमें के लिख रखा है शिवदयाल जी के अपने वचना में, तेरा के दिल से राधा स्वामी दयाल की दया सारा स्वामी सा है। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये वचन जगतनाथ स्वामी है। इसकी दफा एक में के लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहां सतनाम और राधा स्वामी को मुकाम बताया, मुकाम माने स्थान पहुंचावे। 13-14 पृष्ठ अपने पढ़ा। फिर तीसरी दफा में क्या लिखा है, जितने भी आचार्य और महात्मा होता, मतलब ये सिद्ध करना चाहता दास के, इसको मंजिल बोलता है कि संत सिर्फ, ये लिखा है कि सब, तो सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरे मंजिल दूसरी मंजिल पर, बिरले साध प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं, पांचवी के बाद सीधे आठवीं पे पहुंच गए। मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर तपद तक पहुंचे। अब सतनाम और राधा स्वामी को यहां ये स्थान बता रहे हैं दास, सिर्फ इतना सिद्ध करना चाहता है कि ये दो वचन मैंने के सिद्ध किया है कि राधा स्वामी और सतनाम यो स्थान है ऊपर, जहां पर ऊपर के बारे में। अब चौथी दफा में क्या रो काट दिया, देखो 15 पृष्ठ पे, ये है वही सार्वचन वार्तिक भाग एक और 15 पृष्ठ पे वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए, ये तो वो परम धनी बोल रहा है, ये शब्द शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बोल रहा है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, हो गया ठीक, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान तय, दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब वहां सतनाम को मुकाम में बोल रहे थे, मुकाम का मुकाम है, प्लाट का प्लाट है, ये समझो नालायक कहेंगे, देख वचन। और जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, ये जोड़ दिया गया टाडंगा, इस सतनाम को के बोला है संता ने, जिसको कहते हैं सतलोक भी क्या है, सचखंड भी, सार शब्द भी, सत शब्द भी और सतनाम भी, सतपुरुष भी, सतनाम ने कहे हैं। अरे थरा गजब हो, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब ऐसे नालायक संतों ने यू बैठा बैठा रखा है और इसके पीछे करोड़ों आदमी लाग रहे, भेड़ वाली चाल अपना क्रम बिगाड़ रहे। अब इसकी के द्रुप्ति हुई, कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरु अब मर गए वो हो गए भूत मसान। यू भूत बना फिर शिवदयाल जी के, झूठा गुरु। अब दिखाता हूं आपको, ये इनका जीवन चरित्र उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, ये देखिए जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा इतने यूपी से। और जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी दयाल की दया, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, और लेखक हैं इस शिवदयाल जी के छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वद का अधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। इसके ये कहां से प्रिंट हुआ है, अर्पण मुद्रक है, अर्पण प्रिंटरी, प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद, ये हो परम धनी। देखियो डर ना जाइयो, मेरा पाचन कर लो, ये हो परम धनी, ये है परम धनी वो उनके। अब हे भगवान, परम पुरुष पूर्ण धनी अधूर स्वामी जी महाराज, अरे पूर्ण धनी का देखिए क्या बनेगा। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 78 पे और 71 नंबर वचन। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ वर्ष अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनमें प्रेम की हालत, इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन का अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और जब स्वामी जी महाराज कथा से पुरुषत पाके हुक्का पीते थे, ओहो यार रईखी कसर और पाएगी धर्म परम धनी की हुक्का पीता था, या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा, बुक्की जी महाराज जी के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। अब इसमें यह स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी परम धनी राधा स्वामी जो का यो प्रवर्तक शिवदयाल जी चरणों पर मत्था टेकवाता था। अब राधा स्वामी पंथ के अनुयायी क्या कहते हैं कि परम संत उनकी के पहचान है कि एक तो वो पैसा नहीं लेते, दूसरे वो चरण नहीं छुआते। ये तरह परम धनी तो चरण भी छुआ हुआ और बिना पीछे ही अमैल कितने गाड़े दिए, इतने बड़े बड़े आश्रम बना रहे, ये कोई वैसे ऊपर तो पड़ गए, तो इनकी बनावटी बातें। तो हमारे भक्त ने कहा कि भाई तुम लोगों को हो परम संत की ये पहचान है, वो चरण नहीं छुआता, फिर तुम्हारे ये जीवन चरित्र में लिखा हुआ है बुक की जी उसके चरण का अंगूठा चूसा करती, कोई मत्था टेकना तो उसको कह दिया जाता दूसरे चरण पर टेक लो, ये क्या है? है हमने देखा कौन कदे पढ़ाई नहीं, है आपा अजय को ज्ञान तो है नहीं किसी ने, सारी दंत कथा सुना रखी, अपने पंथ का भी प्रत्येक अपने अनुयायी को, उस अनुयायी को अपने ही पंथ के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं, तो हमारी बात तो निकड़ भी लागे है, वो अपने से परिचित नहीं है, इनको भी हमने पढ़ाना पड़ेगा। देख आपके ये लिख रखा है अन्यो रामपाल बुरा को आवे नौर मेरव के दोष है भाई, अब ये लिख रहे हैं मैं पढ़कर सुना दोनों कहो तो झूठा है कपटी, अलिख तुम रहे झूठो फिर झूठे तुम हो, गलत तुमने लिख रखा है, मैं कैसे झूठा, मैं तो आपका लिखा हुआ एज इट इज पढ़कर सुना रहा हूं और दिखा रहा हूं, सुना सुना भी ना रहा पढ़ा रहा हूं साथ में। अब देखो आगे कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस पासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब फिर बताऊंगा भजन करती थी या भूत के नशे में पड़ी रहती थी। इनके जो स्वामी इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु हुई शिवदयाल जी की राधा स्वामी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजिर हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, तो सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती। आह भूत हुक्का पीण फिर आ गया, हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेस्तर किया करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, मरी इतने उसका महा ही रहे, उसके अंदर ही रहे। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी ट्रांसमीटर बन गया, तो तो बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद यानी लेखक कहता प्रताप सिंह शिवदाल जी का छोटा भाई, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। भूत का बुक्की का आगे बोला करता और भूत बुक्की में बोलता फिर, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब, ये राय साहब है सालग्राम, राय साहब ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्माओं, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान, अब क्या करती थी अब बुक्की? यो एक डेढ़ महीने तक तपतशिला पे भुन्या उड़ घड़ा काल ने गेर के, फिर इसकी भूत की योनि के लिए भेज दिया। यो सीधा भटकता हुआ वहां आ गया, बुक्की में प्रवेश कर गया अपनी शिष्या में। अब फिर वो उसी तरह बुक्की यानी रोटी बनावे वो कब्र के आप खावे तलंग पे बैठ के, जिस तरह पहले बैठा करता बुक्की बैठे वहां पर, और वो कब्र का गुरुड़ गुरुड़ छक्का उक्का पीवे। और यू कहता लेखक प्रताप सिंह कहता कि मुझे जब आपत्ति आ जाती थी मैं बुक्की के सामने जाके प्रश्न करता था, मेरी समस्या का फिर समाधान बताते थे। क्यों बुक्की बोलो भूत? एक भगत कह रहा था जी, मेरा चाचा राधा स्वामी था और वो काफी देर शाम के समय, सुबह भी शाम को भी कई एक घंटा डेढ़ घंटा वो इतनो बैठ जाया करता, कत्ती जन इसमें सांस न मांस, ऊपर कपड़ा गिर रहता, इन बैठा रहता दो दो घंटे, और वो बीड़ी सिगरेट पिया करता, ओक्का भी पीता था। ओक्का तो राजा स्वामी वाले का दादा ला ही है क्योंकि इनका जो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट पीन लाग रहा, और वो चूरमा घना खाया करता। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अपने पुत्र वधु में बड़के बोलने लग गया उसको, और वह कभी बीड़ी नहीं पिया करती, बीड़ी पीन लग गई और चूरमा बनावर खावे। युवा कई बार धमका दी, पीट पैट दी, तनु कह थरा नाश कर दूंगा, मैं थरा चाचा बोलू हूं, और ले वो चाचा भी दुखी कर, तू भक्ति करा करता बोला, फिर ना बोले नु कह तू भक्ति करता था कि भूत बन गया, कति नहीं बोले। कहू बोला उसके नु बोला मेरा वहां मकान बना दो, बाहर एक मंडी सी बनवा दी, फिर भी ना पीछा छोड़े। और एक आधी बार उसने ऐसा कुछ हमारा भविष्य का भी बता दिया जिससे हमें कुछ लाभ भी हो गया है इस तरह, लेकिन वो दुखी गणा करा करे, उसका मां रहे ना वह कुछ काम करे, सारे दिन पड़ी रहे नू बेचारी, वो दे तोड़ा कुंगर उसका मां बड़के उस लड़की में। तो कहता इब आपका नाम लिए पाछे उच्चा चंद पांडा छूटा भूत ते। तो ये दशा थी इस शिवदयाल जी की, ये भूत बनकर बुक्की में आ गया, मैं चूरमे खावर होका पीवा पलंग पर बैठ के, और वो प्रश्न करे वो बुक्की में बोला, बुक्की को रेडियो स्टेशन था, आकाशवाणी उड़े हुए थी उसकी, वो भूत था उसमें। तो पुण्यात्माओं, रामपाल इसीलिए बुंडा लग गया है कि सच्ची कहे, और सच्ची कहे बिना यू जख्म भरे को ना। पुण्यात्माओं जैसे हमारे एक भक्त था, एक भक्त था बुढ़ा, हम काशी यात्रा पे गए थे एक बार, वो रस्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये बरवाला आश्रम जो पुराने वाला था छोटा सा था, उसमें एक दो कमरे बना रखे थे, वो यहां रहने लग गया रहा करता। तो वो यहां बरवाला किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वही एक कंपाउंडर भेज दिया रोज के 10 रुपए पट्टी के, ले ले 20 रुपए। वो जावे उसने पट्टी खोला और छेड़ा छेड़ी करे, बुढ़ा ने कहा मर गया ना छेड़ा। तो उसने सोची कि दे रोज के 10 रुपए तेरे जावे, वो उसके ऊपर ने पट्टी कराया हुआ, एक महीना हो गया उसमें बदबू मारन लायेगी जख्म में, एक ऐसे घूमता फिरता एक डॉक्टर चला गया। वैसे ही हमारा एक भगत रहता था उसके साथ, उसका मित्र था, उन्होंने जाके देखा बदबू आ रही है, बुढ़ा गया क्या हो रहा है, क्या हो गया इसको? उसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया था, इसका जख्म हो रहा है। उन्होंने देखा अरे सड़े है कति। अब वो वापस सगाया बरवाला शहर में, पट्टी वट्टी सारे सामान ले गया, और वह पट्टी खोली और वह पाड़ी उस पर जख्म बुढ़ा रो है मर गया नो बोला एक ब मरेगा ना टांग कटेगी त्रिया ये कुछ ना हो थोड़ी देर उसने उसका पाड़ के वह पट्टी और पाड़ के जख्म वो ऊपर ऊपर तो लिपाप होती है और अंदर जख्म मवाद बन रहा तो उसको धीरे धीरे ऐसे फोड़ कर सारा मवाद काट दिया फिर खूब अच्छी तरह सफाई करके और पट्टी शुरू करी चौथे दिन जख्म भर गया एक बाबू डर हो गया बतेरा फिर आगे सदागा सुख हो गया तो पुण्यात्मा यह पट्टी पाड़न लग रहा है ये दास आपकी और ये भी ये जख्म भर जाएगा इन्हें तो ऊपर ऊपर लिपा पोती कर रखी जख्म बना दिया ये भक्ति हीन बना दिया आपको कर्म नाश कर दिया आपके और कहते हैं समझा है तो सरदर पाओ बोर नीरे ऐसा दाओ बोलो सतगुरु दे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी कबीर देव कबीर साहब अल्लाह अकबर ये वही परमात्मा है जो बनारस में भारत वर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में कबीर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके सन 1398 में विराजमान हुए थे। इस परमात्मा को ना पहचान कर हम आन उपासना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं ये बहुत निर्दयी है, पूरा कपट इसके अंदर है, हमें धोखे में यहां रखा हुआ है। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से हमें अब प्रकाश हुआ, रोशनी हुई कि हम पूर्ण रूप से यहां मिसगाइड किए हुए हैं, हमें बाई फोर्स यहां रखा हुआ है। अब हम प्रत्येक क्रिया देखते हैं कि किस प्रकार हमें यहां फंसा रखा है और ऐसे जुगाड़ जोड़ रखे जो जीव के बस का नहीं है कि इनको ये तोड़ सके, इनसे बच सके। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ये पांचों के पांचों इस काल के बंधन हैं। इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह बांध रखा है। परमात्मा स्वयं आते हैं, इस काल के जाल से हमें परिचित करवाते हैं। कबीर देव कबीर साहब वो बनारस में जो आए थे, काशी शहर में जुलाहा धानक नाम से जो प्रसिद्ध हुए, ये हमारे पिता हैं। हम सब आत्माओं के, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, या चींटी है, या हाथी है, किसी भी जूनी में जो प्राणी आज दुख उठा रहा है, हम सभी उसी धानक रूपी धानक रूप करतार उस परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की संतान है और अपने के दुख में अपना ही दुखी हुआ करता है। पुण्यात्माओं आप देखते हो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गया, किसी को कैंसर हो रहा है, कोई किसी प्रकार पीड़ित है, कोई किसी दुख से दुखी है। क्या परमात्मा ऐसे दुख देता है? कभी नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि फिर हमें ऐसा दुख क्यों दिया जा रहा है जब भगवान दयालु हैं? परमात्मा ने बताया है कि तुम जहां रह रहे हो ये दयालु नहीं, ये कसाई है। ये ऐसा भगवान है जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सुविधाएं रखता है, अपने बकरे बकरियों के लिए नर मादा को एक जगह रखता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके लिए सब सुविधा बनाता है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए एक झोंपड़ी छान यानी शेड आदि का प्रबंध करता है, उनके लिए जलाशय का व्यवस्था करता है, पानी पिलाता है, चारा चराता है। तो वो भोली आत्मा ये समझती है ये व्यक्ति जो हमारी इतनी केयर टेक कर रहा है ये बड़ा दयालु है, बहुत नेक है, हमारा प्रिय है, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो पशु जूनी में है। और फिर शाम के समय जब भी आवश्यकता होती है उसी समय वो किसी का बेटा मरो या किसी की बेटी मरो, बाप मरो या माँ मरो, वो नहीं देखता एक परिवार के दो हैं या तीन हैं, वो तो उनसे निकाल लेता मोटे मोटे छांट के और शाम को अपना ले जा करके कड़च करवा देता है। पुणात्माओं, इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहां पाल रखा है, ये सत्कर मान लेना। जितना भी आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होते चले जाओगे उतना ही आपका विश्वास परमेश्वर की वाणी में बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे आप देखते हैं कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, इस पर कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, शीतल हवा चलती है, जमीन के अंदर बहुत मीठा जल है, जैसे कितने अच्छे बाग बगीचे, सेब संतरे काजू किशमिश, कितना अच्छा हार बाजरा ज्वारी अन्न, झरने बह रहे हैं, सुंदर दरियाएं चल रही हैं। इन सुविधाओं को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो सचमुच बहुत अच्छा भगवान है, हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रभु ने। और हम भूल जाते हैं उन बकरों की तरह, किसी का बेटा मार दिया, किसी की बेटी मुर्गी, एक एक्सीडेंट के अंदर परिवार नष्ट हो जाता है। उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि हम ऐसा जुल्म ये क्यों हो रहा है। यदि ये दयालु भगवान है, यदि ये दयालु है तो इसे जुल्म क्यों कर रहा हमारे ऊपर। परमेश्वर कबीर जी ने आके बताया कि तुम अपनी नालायकी से, अपनी कमजोरी से काल के जाल में फंस गए, और अपने परम पिता के हृदय से उतर गए। इस काल के ऊपर आप इतने आसक्त हो गए कि रोके नहीं रुके तुम, और इस काल ने फिर यहां लाकर के आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि आपको परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, अपनी महिमा बना ली और परमात्मा की नामो निशान मिटा दिया। वो परमात्मा कबीर देव जी स्वयं ही आकर के हमें यहां याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अपना आत्मा यहां हम अपनी महिमा की भूख में बहुत कुछ करते हैं। परमात्मा याद दिलाते हैं कि यहां का जो यश है तेरी महिमा है या नकली है। मान लीजिए कोई अच्छा महान संत हुआ, किस कोई अच्छा राजनेता हो गया, और भी कोई ऐसा समाज सेवक बन गया, बहुत अच्छी महिमा होगी उसकी और जनता उससे बहुत प्रभावित हुई। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका स्टेच्यू बना दिया सत्कार के लिए, एक उसकी यादगार बना दी, उसका बुत बना दिया, एक मूर्ति स्थापित कर दी बहुत साजबाज के साथ, और प्रति वर्ष उसका जन्मदिन और उसका जो कोई परोपकार दिन मनाया जा रहा है, और वो मनमाने की तरह गधा बन रहा, मनाया जाओ उस परोपकार दिन ने, मनाते रहो वहां उसके जन्मदिन ने, के सारा लगे उसको। तो क्या बताते हैं परमात्मा? मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सुख का सागर है। परमात्मा कहते हैं तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो, आप यहां गलत देश में आ गए। पुण्यात्मा जिसमें आपको परमेश्वर की इस वाणी का चस्का पड़ जाएगा, इस परमेश्वर की अमृत वाणी का जब आपके अंदर एक चाह बन जाएगी, आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, फिर आपको परमात्मा की भक्ति और ये वाणी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। ना आपका गाने सुनना दिल करे, ना कोई बकवाद सुनने को दिल करे, ना कोई इधर उधर की गप्पे मारने को दिल करे। आपकी यही इच्छा रहेगी कि भगवान की वाणी पढ़े, मंत्र जाप करें, नित नियम करें। तो क्या बताते हैं परमात्मा? अनसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियावे। कितनी प्यारी वाणी बताई है परमात्मा ने कि ये जीव ये आत्मा अनसा देश सुदेश का उस अच्छे देश में रहा करता था सतलोक में, और यो पड़ा कुदेशों आए इस गंदे लोक में गिर गया आके इस काल के लोक में। और जिनका चारा मोतियां हंस मोती खाते हैं, हंस एक पक्षी होता है जैसे कल और परसों के सत्संग में भी विवरण दिया था, वो तालाब पर होता है सरोवर में होता है, वहां छोटे मोटे और जीव जंतु बहुत होते हैं, घोगे का आकर जिस तरह ये शंख देखे होंगे मंदिरों में बजाते हैं शंख, इस टाइप के छोटे छोटे जीव ऐसा ही कवर होता है बॉडी होती है उनकी, उनको गोगे का आकर गोगे, वो गोल गोल भी होते हैं सीधे भी होते हैं जैसे शंख टाइप छोटे छोटे, उनमें जीव होते हैं, और बुगला या कौवे उन जीवों को उन गोगियों को फोड़ फोड़ कर उनके मांस खाते हैं, लेकिन वो हंस नहीं खाता वो मोती चुभता है। तो आपके विषय बता रहे हैं कि आप हंस हो गए, हंस में एक और गुण होता है, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डालकर हंस के सामने रख दो, हंस पक्षी वो दूध दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है, उसमें जो ना गुण दिया परमात्मा ने, तो दूध पानी छानने वाले को हंस कहा जाता है। तो आप जी ने दूध और पानी छान लिया, आप हंस वृत्ति में आ गए। पहला दूध पानी आपने ये छाना कि कौन भगवान है, किस भक्ति से हमारा कल्याण होगा, ये निर्णय कर लिया, छानबीन कर ली। और दूसरा ये हो गया कि आप बीड़ी शराब मांस तम्बाकू निंदा चुगली चोरी जारी ठगी डाके ये नहीं कर सकते, ये आपने गोगे खाने छोड़ दिए, रागनी नहीं सुन सकते गाने नहीं सुन सकते। तो कहते हैं हंसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशों आए जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों क्यों पतियाए। इस दास के अभी लगभग 16वां वर्ष चल रहा है उपदेश दे रहा है ये दास, और गांव गांव में नगर नगर में जाकर के परमात्मा की प्यारी आत्माओं को जगाया, घर घर में जाके सत्संग किए। तो ऐसे ऐसे कट्टर जो है ना शराबी थे, ऐसे डेड ड्रिंकर बोला रहे, जिसने ड्रिंकर तो थे साथ में चैन समोकर, यानी सारे ही ऐब जिन में, लेकिन वो थी अच्छी आत्मा, कुसंगत में पड़के बुराई शुरू कर दी, और फिर ये ज्ञान सुना परमेश्वर का तुरंत त्याग दिया तुरंत। कहते हैं ये होते हैं हंस, एक पलक में त्याग दे सो सतगुरु के हंस, वो पुण्य आत्मा होती है। तो यहां क्या बताते हैं कि हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशों आए जिनका चारा मोतियां फिर गोग्यों क्यों पति आए। तो ये पाप नहीं करते वो प्राणी। परमेश्वर कबीर जी ने हमें आकर यहां बताया है कि मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सतलोक में हमने अभी तक स्वर्ग सुना था स्वर्ग, और हम स्वर्ग को फाइनल मान रहे थे कि स्वर्ग में जाएंगे, कोई व्यक्ति घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उनका करते स्वर्ग गया स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग की डेफिनेशन बताते हैं परिभाषा आपको बताते हैं। जैसे एक धनी व्यक्ति वर्ष के 10 महीने तक यहां गर्म क्षेत्र में हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में 10 महीने अपना व्यवसाय बिजनेस करे और पैसे कुछ बच जाए 20-30 हजार रुपए, तो मई जून में यानी ज्यादा गर्मी वाला समय होता है उसको कुल्लू मनाली शिमला और वहां चला जावे, वहां होटल के अंदर कमरा किराए पे ले वे और सारा दिन खूब सैर सपट्टे करे, लेकिन वो खर्चा सारा उसकी जेब तय हो रहा है, वह जेब खाली हो रही है प्रतिदिन, और दो महीना में 20-30 हजार रुपये वो जितने ले गया था पॉकेट में वो खत्म करके फिर मुंह लटका के वहीं आ जाता अपने कर्म क्षेत्र। अब अगले सीजन में हो सके ना दाव लगे 10-20 हजार रुपये की बचत का, तो फिर वो तो उससे भी गया। तो पुण्यात्मा स्वर्ग में वही प्राणी जाते हैं जो यहां पुण्य करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, और उन पुण्यों के कारण वो स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग के अंदर सारी बकवाद है, शराब पियो, कुछ बकवाद करो, गाने बजाने, सब वैश्याओं के नाच, बड़े बड़े सारे, सबसे ज्यादा बकवाद इन स्वर्ग के अंदर है। और वहां उतने दिन ही प्राणी रह सकता है जितना उसके पुण्यों की पूंजी वहां डिपॉजिट है, और जिस दिन वो पुण्य अक्षीण हो जाएंगे एक सेकंड भी नहीं रहने देंगे स्वर्ग में, तुरंत नरक में ठोकेंगे। नरक के बाद फिर ये यही पृथ्वी पर फिर धक्के खाओगा। तो परमात्मा कहते हैं स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया, क्योंकि इस ज्ञान से हम परिचित हो जाएंगे तो सबसे बड़ा शत्रु है ये स्वर्ग, तो हमारा हमारी पूंजी को नाश कराता है ये राजपाट यहां का, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। या किसी भी राजपद को हमने प्राप्त नहीं करना, इंद्र दा राज काग दा वेष्टा। ओए होए होए, अब सतलोक के सुख की तुलना में यहां स्वर्ग के राजा इंद्र का राज भी कहते हैं कौवे की बीट के तुल है, अलवे के बराबर में। ओहो, अब आप विचार कर लेना। तो सतलोक इतना अच्छा सतल है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर के धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण दिया गया है, यानी कबीर वाणी में, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू, जो गीता ज्ञान से वेदों ज्ञान से भिन्न है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई प्रभु है उसका ज्ञान कराएंगे। अब क्या कहता है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि मैं जो तुझे कह रहा हूं मेरी इस बात ने जो मान लेता है, आश्रित हो जाता है मेरे इस ज्ञान पर, उसके पश्चात वो उस तत्वर्म से परिचित हो जाता है। तत्वर्म, तत्वर्म कौन है, तत्वर्म क्या बताया इस काल ने, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा अर्जुन ने कि वो तत्वर्म कौन है प्रभु, जिसका आप 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिक्र किया। 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी प्रभु परमेश्वर के बारे में संकेत कर रहा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मैं जो तुझे बता रहा हूं इस पर आश्रित होकर और उस तत्वर्म से परिचित होकर, तत्वर्म मन परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत और पूरे अध्यात्म ज्ञान से, क्योंकि तत्व ज्ञान के अंदर पूरा विस्तार से बताया जाता है, और सभी कर्मों से, यानी कौन से कर्म पाप हैं, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, इससे परिचित होने के उपरांत ये प्राणी फिर जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का यत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु। कहते हैं सबसे बड़ा दुख इस प्राणी के लिए बुढ़ापा और मृत्यु है। पुण्यात्माओं, आज आप कितने सुखी नजर आते हो अपने आप में, भाई मेरा बेटा भी है, बेटी है, अच्छी संतान है, खूब उनको सुविधा है, उनके बाल बच्चे हैं, बढ़िया उनका व्यवसाय है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये है कितने दिन का, یا دماغ میں نہ آتی کہ یہ ہے کتنے دن کا. آپ دیکھتے ہو اسے بڑے بڑے سیٹھ منتری مکھیہ منتری پردھان منتری ایک منٹ میں یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, پریوار کو تیاگ کر چلے جاتے ہیں, ساری سمپتی کو چھوڑ کر ایک سیکنڈ میں مرتیو کو پراپت ہو جاتے ہیں. تو ہماری بدھی وہاں نہیں پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ ہم نے تتو گیان نہیں سنا, ہمیں کوئی سنت نہیں ملا. تو پنیاتما یہاں سے تو آپ کو جانا پڑے گا. اس بات نے مانو چاہے مت مانو, یا فائنل ہے, پر ہم نے ماننا پڑے گا کیونکہ ہم یہ بھکت ہوگی. ہمیں گیان مل گیا, ہماری وہ موتیا بند کا آپریشن سماپت ہو گیا, ختم ہو گیا. ہمارا موتیا بند کا آپریشن ہو گیا, ہمارا موتیا بند نشٹ ہو گیا. تو کیا بتاتے ہیں کہ ہم اس ستلوک میں چلے گی, وہاں ذرا اور مرتیو نہیں ہے. وہاں کبھی نہ بڑھاپا ہوتا ستلوک میں, نہ مرتیو ہوتی. وہاں یوا شریر رہتا ہے اور کبھی مرن نہیں ہوتا. ہم اتنے ڈھیٹ ہو لیے یہاں پر, ہمارا کسی کا کوڈ لگ رہا ہے, وہ بھی نہ سوچا بھگوان جیوت رہا رو. کسی کا اور بھی بھینکر بیماری ہے, تین سوچے بھگوان میرا جیون بچے کسی طرح, جان بچے, اور جان پھر بھی جائے گی. ایک تو ہم نے سوچے ہیں, پہلا تو دکھ یہاں اور بہت ہے جس کی گڑتی کو نہیں. بچپن سے ہی پرانی دکھ اٹھانے لگتا ہے, لیکن ہم چھوٹے موٹے دکھوں کے عادی ہو گئے سہن کرنے کے. ان عام دکھوں کو تو ہم دکھ بھی نہ مانتے, اور ہم اتنے ڈھیٹ ہیں جب مرتو نہ ہو تو ان دکھوں نے بھی سہن کر لیا, کوئی دقت کوئی نہیں. دکھ بھی اور پھر مرتو بھی, دونوں پیڑا اور بڑھاپا. تو پرماتما کیا بتاتے ہیں, وہاں کوئی دکھ نہیں ستلوک میں. ایسی ہی سرشٹی ہوگی وہاں پر, ایسا ہی آپ کا شریر ہوگا, لیکن اس کا میٹریل دوسرا ہوگا. یہ میٹریل بہت خراب ہے جو شریر ہم نے پہن رکھا ہے, جو یہ محل ہمارا ملا ہوا ہے, یہ بالکل ورتھ ہے. یہ تو باڑوں کی بھیت, باڑوں ریت سے بنا ہوا کوئی مکان ہو وہ کتنا استھائی ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہے. اور ایک کنکریٹ سے بنا ہو تو یہ سمجھ لو کہ ستلوک میں آپ کو وہ شریر ملے گا جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. وہ ایس ناویرم سکرم قائم, ایس ناویرم, وہاں تیج پنج کا شریر ہوگا. آپ کے شریر کا اتنا سندر ہوگا کہ سولہ سوریہ کی روشنی ملا دے, اتنا تیز ہوگا آپ کے اس شریر کا. گرمی نہیں ہوگی لیکن اتنا نور ہوگا آپ کے شریر کا. اور وہاں سدا بہار ورکس ہیں, پھلدار ورکس ہیں, دودھوں کی ندی چلتی ہیں, امرت سروور ہے وہاں پر. وہاں کوئی دھول مٹی نہیں ہے, وہاں دن رات نہیں ہے. تو کیا بتاتے ہیں, وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ بی پی آئی ہوئے نہ لو ہوئے, آپس میں وہاں دویش نہیں ہے, راگ نہیں ہے, کام نہیں, کرودھ نہیں, کسی پرکار کا اہنکار نہیں, کوئی بائی بٹوارا نہیں. اپنا آتما آپ یہاں آتے ہو, یہ ریہرسل ہے اس منی ستلوک, سمجھ لو یہ ستلوک آشرم بروالا منی ستلوک. یہاں آپ آئے ہو, آپ کو ایک جیسا آہار, ایک جیسا بستر, ایک جیسا بیٹھنا, سب کو ایک جیسا سنان آدی کرنے کی ویوستھا ہے. آپ یہاں آئے ہو, آپ نے کوئی کام نہیں, نہاؤ دو, کھانا بناؤ اور کھاؤ, اور مالک نے یاد کرو. تو ایسے ستلوک میں ہم رہیں گے. راگ دویش ایک آدھا نکما کھر ہمارے اندر یہاں دوست گنے بھر رکھا ہے. ہم کوئی نئے نئے آئے ہیں, وہ پرانی عادت کے کارن تھوڑی بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں, کوئی درزائی پر روڑا کر دے, کوئی گدا بچھا رہا ہے تو پرین کر لے, اور یہ تو کر لو کتا ہے, باقی ہے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی کو کوئی نیو نہیں, وہ ایک جیسا سب کو ویوہار ہے, ایک جیسا سب کو بیٹھنے اٹھنے کھانے کی وستو مل رہی ہے. تو یہاں دویش تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی عادت وش बकवादी आदमी कितने कर ले, वो तो उसकी आदत बनी हुई है। तो सतलोक में ऐसे है, वहां ना कोई भाई बंटवारा, ना किसी चीज का अभाव, सबको एक जैसा वहां पर मकान है, एक जैसा सब आहार खाने को है, एक जैसा व्यवहार है। तो वहां ना द्वेष है, ना राग है, और ना ही किसी प्रकार का और विकार है। अब जैसे छोटे बालक होते हैं, 2, 4 साल के, 5 वर्ष के, उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, उनमें बिल्कुल ही नहीं होती। और कितना अच्छा उनका जीवन होता है, कितना उनका जो है ना सुख होता है उन बच्चों को, अब उस जीवन में ही हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जितने युवा होते चले जाते हैं, ये विकार आग लगाते चले जाते हैं, इस जीव को 24 घंटे बेचैन रखते हैं। ऐसा भाव वहां रहेगा जो सतलोक के अंदर कोई विकार आवे को ना, इस प्रकार का शरीर है और हर तरह की सुविधा वहां पर उपलब्ध है, तो उसको कहते हैं सुख का सागर। सुख सागर की परिभाषा थोड़ी सी बताते हैं। जैसे कई बार इस दास के साथ तो बहुत बार बनती है ऐसे, और ये कभी आपके साथ भी बनी होगी, अकेले बैठा हो, कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नहीं लगता, ना कोई शत्रु महसूस होता, कितना ही निकम्मा व्यक्ति कितना दुख दे रहा हो अपने को, उसके प्रति भी एक बहुत अच्छा प्रेम जाग जाता है, द्वेष नहीं रहता।